धर्मशास्त्र और धर्म साधना। मध्य युग के धार्मिक साहित्य को दो प्रकार से विभक्त करके विचार किया जा सकता है। स्मृतियों, उनके टीकाओं, पुराणों और निबंधों का साहित्य पुराने जमाने से ही धर्मशास्त्र कहा जाता रहा है। फिर एक दूसरे प्रकार का साहित्य है जो साधकों को परम पुरुषार्थ प्राप्ति की प्रतिक्रियाओं को बताते हैं। इनमें तंत्र हैं, योग के ग्रंथ हैं, भक्ति की पुस्तकें हैं और पुराणों के वे अंश हैं जो इन्हीं बातों की चर्चा करते हैं। मैंने सुविधा के लिए इस प्रकार के साहित्य का नाम धर्म साधना का साहित्य रख लिया है। यद्यपि यह नाम सुविधे के लिए ही रखा गया है, पर यह बहुत दूर तक सार्थक भी है, क्योंकि इस श्रेणी का साहित्य व्यक्ति की साधना का ही सहायक है। धर्मशास्त्र सामाजिक आचार विचारों और विधि निषेधों की व्यवस्था करके है। वर्णों और आश्रमों के सामान्य और विशेष कर्तव्यों का निर्देश देते हैं। अंतर वैयक्तिक संबंधों के कर्तव्य द्वंद की मीमांसा करते हैं, जबकि धर्म साधना वाले ग्रंथ साधक के प्रतिपाल्य नियमों और अनुष्ठानों का विधान करते हैं। साधना के विविध स्तरों में कैसे अनुभव होते हैं और उनसे साधना मार्ग में अग्रसर होने के या पिछड़ जाने के कौन से लक्षण प्रकट होते हैं, उसकी विवेचना करते हैं। कभी कभी धर्मशास्त्र और धर्म साधना साहित्य एक दूसरे से इस प्रकार उलझ हुए मिलते हैं कि उनको अलग करना बड़ा कठिन होता है, पर साधारणतः मध्ययुग का गृहस्थ हिंदू धर्मशास्त्रीय मार्ग का अनुसरण करता था और विशेष विशेष मार्ग के साधक तत्त्व संप्रदाय या मार्ग के साधना ग्रंथों के निर्देश पर चलते थे। साधारण गृहस्थ विविध तीर्थों में स्नान करने से पुण्यार्जन होने में विश्वास करते थे, वर्णाश्रम व्यवस्था में आस्था रखते थे, व्रतों और उपवासों में विश्वास पोषण करते थे, स्वर्ग नरक पुनर्जन्म कर्म फल पितृ साध आदि में पूर्ण श्रद्धा रखते थे और मंगल कामना से सभी देवताओं और उपदेवताओं की पूजा किया करते थे। इस तीर्थ व्रत उपवास प्रधान जाति वर्ण विश्वासी सर्व देवोपासक मत को एक शब्द में स्मार्त मत कहते हैं। स्मार्त मत अर्थात स्मृति निर्दिष्ट धर्म व्यवस्था का पालन करने में कल्याण मानने वाला मत। इस प्रकार का मत कोई नई बात नहीं है। महाभारत काल में भी गृहस्थों का जो वर्णन है उससे कुछ इसी प्रकार के गृहस्थों का पता चलता है। महाभारत में भागवतों के परम उपास्य श्री कृष्ण भी शंकर की स्तुति करते बताए गए हैं। फिर भी इन दिनों का प्रचलित विश्वास यह है कि स्मार्त मत के पुनः प्रतिष्ठा शंकराचार्य ने की थी। उन्होंने ही पंच देवोपासना की पद्धति चलाई। जो हो, स्मार्त मत का सीधा अर्थ स्मृतियों की व्यवस्था को मानने वाला मत है। पुराण और महाभारत को भी स्मृतियों में गिना गया है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि स्मृति और पुराण मुख्यतः गृहस्थों के सामाजिक और अंतर वैयक्तिक संबंधों और कर्तव्यों के प्रतिपादक शास्त्र हैं। इन्हीं को धर्म शास्त्र कहते हैं। धर्म साधनाओं को भी दो मोटे विभागों में बांट लिया जा सकता है, योग मूलक साधनाएं और भक्ति मूलक साधनाएं। प्रथम श्रेणी के साधना में साधक का विश्वास अपने ऊपर होता है। इस शरीर को ही नाना भाव से आसन प्राणायाम आदि के द्वारा संयत करके मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया जाता है। यह विश्वास किया जाता है कि परम प्राप्तव्य वस्तुतः इस शरीर से बाहर नहीं है, वह इसी में व्याप्त है। भक्ति मूलक साधना इससे भिन्न वस्तु है। ऐसा तो उसके अनुयायी भी मानते हैं कि परम प्राप्तव्य शरीर के भीतर ही है, पर इस बात पर वे बहुत अधिक जोर नहीं देते हैं। भक्ति मूलक साधना का साधक वस्तुतः अपने आप पर कम और अपने परमाराध्य प्रेममय परमात्मा पर अधिक विश्वास करता है। अपने आप को अत्यंत तुच्छ समझकर परम प्रेममय भगवान को संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण भक्ति की पहली शर्त है। अपने को निशेष भाव से भगवान के चरणों में उत्सर्ग कर देने का नाम ही भक्ति है। राजनीति की परिभाषा में समझना चाहें तो योग मार्ग गणतांत्रिक धारणा की उपज है और भक्ति मार्ग साम्राज्यवादी मनोवृत्ति की देन है। भारतवर्ष में इन दोनों साधनाओं के बीज बहुत पुराने हैं, पर मध्य युग में वे कुछ विशेष हो गए हैं। क्या और कितना विशेष हुए हैं, यही विचार्य है। पहले योग मूलक साधना की बात ली जाए, भक्ति मूलक साधनाओं की चर्चा हम थोड़ा रुककर करेंगे। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस मनुष्य शरीर में जो परम रहस्य का आगार है, कुछ अद्भुत शक्तिशाली बातें हैं। बहुत पुराने जमाने में चार वस्तुएं बहुत शक्तिशाली मानी जाती रही हैं: मन, प्राण, बिंदु और वाक। मध्य युग में कुंडलिनी एक पांचवी वस्तु है जो अत्यंत शक्तिशाली तत्व स्वीकार की गई है। इस प्रकार की इस शरीर में ये पांच बातें अनंत शक्ति का स्रोत बताई गई हैं। इसमें से किसी एक पर यदि साधक अधिकार जमा ले तो बाकी सब अनायास बस में आ जाती है। इन्हीं में से किसी एक को अधिक और बाकी को हम महत्व देने के कारण विभिन्न योग मार्ग बने हैं। मन को वश में करने को प्रधान कर्तव्य बताने वाला योग राजयोग कहा जाता है। प्राण को प्रधान रूप में संयत करने को कर्तव्य प्रतिपादित करने वाला योग हठ योग कहा जाता है। वाक को संयत करने की विधि पर जोर देने वाला योग मंत्र योग और जप योग कहा जाता है। और कुंडलिनी को उद्बुद्ध करने को भी प्रधान कर्तव्य समझने वाला योग कुंडलिनी योग कहा जाता है। शुक्र को संयत और विनिर युक्त करने की अनेक मार्ग हैं, जो विभिन्न प्रक्रियाओं के कारण विभिन्न नाम ग्रहण करते हैं। वज्र यानी ऊर्ध्व रेता साधक इस महाशक्ति के विनियोग और संयम की विशेष विधियों पर जोर देते हैं। इस प्रकार यह मार्ग इस शरीर के भीतर ही परम सिद्धि का संधान खोजता है। इस प्रकार के साधना का सबसे प्रथम आरंभ कब हुआ यह कह सकना बड़ा कठिन है। न तो यह मध्य युग की अपनी विशेषता है और न वैदिक की परंपरा। बौद्ध और जैन जैसे तैसे वैदिक धर्म के विरोधी संप्रदायों में भी इसका मान है। पाशुपत और वाम मार्ग जैसे वैदिकेतर संप्रदायों में यह योग पद्धति गृहित हुई है। मोहनजोदड़ो में ऐसी मूर्तियां मिली है जिनके ध्यान स्तिमित नयन मुद्रा को देखकर पंडितों ने अनुमान किया है कि वहाँ के सभ्यता में जो संभवतः आर्येतर सभ्यता थी यह साधना अवश्य प्रचलित थी। योग मार्ग के ऊपर लिखी विशेषता को यदि ध्यान में रखकर विचार किया जाए तो मूल संहिताओं के धर्म से जिसे कभी कभी बहुदेववाद कहा गया है यह बहुत भिन्न वस्तु है। मूल वैदिक संहिताओं का प्रधान धर्म इस शरीर के भीतर परम प्राप्तव्य को प्राप्त करने पर अधिक जोर नहीं देता है। एक बार सरसरी निगाह से इस प्रधान धर्म को देखने का प्रयत्न कर लेना उचित होगा।